हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद धृति ने निगाहें सामने उठाईं। ठीक सामने खड़े अर्णव को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। एक पैर हवा में उठा ही रह गया। पहले तो धृति स्तब्ध सी उसे देखती रही, फिर तुरंत ही हड़बड़ाहट में कदम पीछे हटाना चाहा, पर तब तक अर्णव ने उसकी बाँह पकड़कर उसे वापस अपने करीब खींच लिया। धृति की आंखों की पुतलियां हैरानी से फैल गईं और भय से शरीर कांप उठा। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को अर्णव से टकराने से बचाया और आंखें बड़ी बड़ी करके घबराई हुई सी उसे देखने लगी, जबकि अर्णव की नज़रें उसकी गर्दन पर टिकी थीं। अर्णव ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया तो धृति उससे दूर होने के लिए कसमसा उठी। छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? छूइए मत मुझे आप, मैं कह रही हूँ छोड़िए मुझे, धृति बोलती रही, पर अर्णव को तो जैसे उसके शब्द सुनाई ही नहीं दे रहे थे, मानो उसकी आवाज़ अर्णव के कानों तक पहुँच ही नहीं रही हो। धृति उससे छूटने को कसमसाती रही, पर अर्णव की मजबूत पकड़ से छूट नहीं सकी। अर्णव ने न तो उस पर ध्यान दिया और न ही उसकी बातों पर, उसका पूरा ध्यान धृति की गर्दन पर था। उसने हाथ आगे बढ़ाकर धृति के कुर्ते के नीचे से मंगलसूत्र बाहर निकाल दिया और सख्त निगाहों से उसे घूरते हुए बोला, हमारे शादी और रिश्ते की निशानियों को छुपाने की कोशिश भी मत करना, सबको पता चलना चाहिए कि तुम शादीशुदा हो और तुम पर, तुम्हारे ख्यालों पर, तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। अर्णव ने कठोर लहजे में अपनी बात कही और उसे छोड़ते हुए बाथरूम की ओर बढ़ गया। धृति सांसें रोके, आंखें बड़ी बड़ी किए बस उसे देखती ही रह गई। अर्णव के बाथरूम में जाने के बाद उसने अपने गले में फांसी के फंदे जैसे लटकते मंगलसूत्र को देखा और खुद से ही बोली, मैं चाहकर भी इस शादी को झुठला नहीं सकती। कैसी मजबूरी है ये कि जिस रिश्ते से मुझे हर पल की जिल्लत, तिरस्कार, अपमान मिलता है, उसकी निशानी को भी मैं खुद से अलग नहीं कर सकती। धृति ने ठंडी आँख भरी और कमरे से बाहर निकल गई। नाश्ते के वक्त धृति अपनी नई जॉब के बारे में सोच रही थी। वहाँ इतने सारे कैंडिडेट थे, पर जॉब उसे मिली। ऑन द स्पॉट उसे सिलेक्ट करके जॉइनिंग लेटर भी दे दिया गया और जल्दबाजी में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया गया। अर्णव की गहरी निगाहें उसी पर टिकी थीं और आंखों में आज कुछ अलग ही चमक थी, जैसे कुछ होने वाला है जिसका उसे बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। लबों पर कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। कुछ तो चल रहा था उसके शैतानी दिमाग में जिससे धृति अब तक अनजान थी। ब्रेकफास्ट के बाद अर्णव रोज की तरह ऑफिस के लिए चला गया। धृति भी उसके साथ ही निकली, पर अलग गाड़ी से। ऑफिस पहुंचकर धृति कुछ पल बाहर खड़ी कांच से बनी उस पांच मंजिला खूबसूरत सी बिल्डिंग को देखती रही, जिसके ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, ASR फैशंस। धृति ने गहरी सांस छोड़ी और अंदर चली आई। नीचे रिसेप्शन पर उसने अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने बड़ी ही इज्जत के साथ उसे फिफ्थ फ्लोर पर जाने के लिए कह दिया। धृति लिफ्ट लेकर ऊपर चली आई। जैसे जैसे वो अंदर जा रही थी, जाने क्यों पर उसके दिल की धड़कनें घबराहट के बारे तेज होती जा रही थीं। धृति के कदम सीधे CEO के चैम्बर के बाहर आकर रुके। उस फ्लोर पर उस तरफ ऐसे ही कई केबिन बने थे। बीच में आने जाने का रास्ता था और उसके दोनों तरफ ओपन केबिन बने थे जिन्हें पार्टीशन से सेपरेट किया गया था। वहाँ मौजूद एम्प्लॉयज काम में लगे थे। आगे बढ़ते हुए धृति को वो एम्प्लॉय मिला जिसने उसका इंटरव्यू लिया था। उसने धृति को जल्दी से जाकर सर मतलब CEO के पास जाने को कह दिया क्योंकि वो थोड़ी लेट हो गई थी। धृति थोड़ा घबरा गई और जल्दी जल्दी CEO के केबिन के बाहर खड़ी हो गई। फिर जरा हिचकिचाते हुए उसने केबिन का डोर नॉक कर दिया। अगले ही पल अंदर से एक सख्त रौबदार आवाज आई, कम इन। धृति ने जैसे ही केबिन में अपना पहला कदम रखा उसके कानों में एक जानी पहचानी सी कठोर आवाज पड़ी, तुम अपने ऑफिस के पहले ही दिन 10 मिनट लेट हो। धृति आवाज सुनकर चौंक गई और उसकी निगाहें आवाज की दिशा में घूम गईं। सामने ही टेबल के दूसरे तरफ चेयर पर कोई बैठा नजर आया जिसकी उल्टी साइड धृति की तरफ थी। अगले ही पल वो शख्स उसकी तरफ घूम गया। धृति की नज़र जैसे ही सामने चेयर पर महाराजाओं जैसे चौड़ में बैठे शख्स पर पड़ी, उसकी आँखों की पुतलियाँ हैरानी से फैल गईं और अचंभित सी वो तेज आवाज में बोल पड़ी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप मेरे पीछे पीछे यहाँ तक चले आए? सामने चेयर पर रौब में फैल कर बैठा अर्णव धृति का एक्सप्रेशन देख कर उठकर खड़ा हो गया और उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए लबों पर कुटिल मुस्कान सजाते हुए बोला, वेलकम टू माई वर्ल्ड मिस धृति अवस्थी। धृति उसका मतलब नहीं समझ सकी और आंखें बड़ी बड़ी किए हैरान परेशान सी उसे देखने लगी। उसके कन्फ्यूजन भरे भाव देखकर अर्णव तिरछा मुस्कुराया और उसके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। अर्णव, ASR फैशंस मेरी कंपनी है, यहाँ का CEO मैं हूँ अर्णव सिंह रायजादा, और तुम्हें मेरी PA बनकर अब परछाई की तरह हर पल मेरे साथ रहना होगा। अर्णव के लबों पर एक ईविल मुस्कान फैल गई। धृति तो जैसे उसकी बातों से सदमे में चली गई थी। वो अचंभित सी उसे देखती रही, फिर इनकार में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है स्वीटहार्ट, मैं यहाँ का बॉस हूँ और तुम्हें अब से मेरे लिए ही काम करना है। मैं नहीं करूँगी आपके साथ काम। धृति ने अर्णव की बात सुनते ही इनकार कर दिया। अर्णव उसका जवाब सुनकर यूं मुस्कुराया जैसे वो जानता हो कि यही होगा। अगले ही पल तिरछी मुस्कान लबों पर सजाते हुए गहरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, अब तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हो, अगले 6 महीने तक तुम्हें मेरे ही साथ काम करना होगा, और अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती हो और 6 महीने से पहले जॉब छोड़ती हो तो कंपनसेशन के रूप में कंपनी को पूरे 2 करोड़ रुपए देने होंगे, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली भी जेल की सलाखों के पीछे जाएगी। एंड आई एम डैम श्योर कि तुम्हारे पूरे खानदान के पास इतने पैसे नहीं होंगे, और ना ही तुम चाहोगी कि तुम्हारी पूरी फैमिली, पहले ही तुमसे नफरत करती है, वो उन्हें जेल पहुंचाने के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराए और तुमसे और ज्यादा नफरत करे। और सबसे बड़ी बात, अगर तुमने इस जॉब को ठुकराया तो तुम्हें कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी। अपने पर्सनल खर्च के लिए भी तुम्हें मेरे सामने हाथ फैलाना होगा और मुझसे फ्री में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। हर चीज की कीमत चुकानी होगी तुम्हें। अब तुम सोच लो कि कौन सा रास्ता बेहतर है तुम्हारे लिए। अर्णव शातिर तरीके से मुस्कुराया। उसने धृति को अपने जाल में बुरी तरह फंसा लिया था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था उसके पास। अब धृति के दिमाग में सब बातें घूमने लगीं। कैसे उसकी जॉब छूटी, हर जगह उसे रिजेक्ट किया गया, फिर इस ऑफर का सामने से उसके पास आना, इतनी आसानी से उसे नौकरी मिलना, ऑन द स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना। सब बातों के बारे में सोचने के बाद उसने अविश्वास भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा, सब आपने किया ना, मेरी जॉब छूटना, हर जगह मेरा रिजेक्शन, इस ऑफर का आना, इतनी आसानी से ये जॉब मुझे मिलना, मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना, सब आपकी साजिश थी ताकि मुझे यहाँ अपने साथ काम करने के लिए मजबूर कर सकें, और जैसे घर में मुझे टॉर्चर करते हैं वैसा यहाँ अपने एम्प्लॉयज के सामने मेरा तमाशा बना सकें। धृति की बातें सुनकर अर्णव अजीब तरह से मुस्कुराया, फिर वापस अपनी चेयर पर फैलते हुए बोला,
आई मस्ट से दिमाग बहुत तेज है तुम्हारा। तुम तो मेरी पूरी प्लानिंग समझ गई। अब जब तुम समझ ही गई हो कि मैंने ये सब तुम्हें यहाँ लाने के लिए किया है ताकि तुम्हारी जिंदगी को और दुश्वार कर सकूं, तो अब और कुछ कहने सुनने की तो जरूरत ही नहीं रह गई है। जैसे ये शादी तुम्हारी मजबूरी है, ये जॉब करना भी तुम्हारी मजबूरी है। 6 महीने से पहले तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकती, और आई स्वेयर कि 6 महीने बाद तुम इस लायक रह नहीं जाओगी कि जॉब छोड़ने का ख्याल भी अपने दिमाग में ला सको। तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक मेरा टॉर्चर सहना होगा, और ये कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एकमात्र रास्ता है तुम्हारे पास। अगर तुम मेरे खिलाफ जाती हो तो आगे की सजा इससे भी ज्यादा भयंकर होगी। अब अच्छे से सोच लो कि क्या करना है तुम्हें। 5 मिनट है तुम्हारे पास। या तो तुम हाँ कहोगी या फिर अपने खानदान के साथ जेल की सलाखों के पीछे जाओगी। अर्णव ने धृति को 5 मिनट का समय दिया और खुद अपने लैपटॉप में कुछ करने लगा। धृति वहीं खड़ी उसे देख रही थी। देखते देखते 5 मिनट गुजर गए। उसके बाद अर्णव ने निगाहें धृति की तरफ उठाई और भौं उठाते हुए आंखों से ही सवाल किया। धृति सब बातों के बारे में अच्छे से सोच चुकी थी। उसने गहरी सांस छोड़ी और भावहीन सी बोली, कर लीजिए जो करना है आपको मेरे साथ। अब नहीं रोकूंगी आपको। मैं भी देखना चाहती हूँ कि अपने गुस्से और नफरत में आप कितना नीचे गिर सकते हैं, अपनी ही पत्नी को अपने ही लोगों के सामने कितना जलील और बेइज्जत कर सकते हैं। अर्णव के चेहरे के भाव अब कुछ बदल से गए। पहले उसने धृति को जी भरकर घूरा, फिर अपने सामने टेबल पर लगे बटन को प्रेस किया। अगले ही पल कैबिन का दरवाज़ा खुला और कबीर ने अंदर कदम रखा। धृति ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपना चेहरा फेर लिया। अर्नव ने कुछ इशारा किया, जिस पर कबीर सर हिलाते हुए वहां से चला गया। कुछ देर बाद दो प्यून एक टेबल लेकर वहां आ गए। देखते देखते टेबल पूरी तरह से सेट हो गया, पर ताज्जुब की बात थी कि उस कैबिन में एक्स्ट्रा टेबल ही लगाया गया था, चेयर का तो नामो निशान तक नहीं था। धृति पहले तो आंखें बड़ी बड़ी करके सब होते देखती रही, फिर जैसे ही आखिरी वाला प्यून बाहर जाने लगा, धृति तुरंत ही बोल पड़ी, भैया चेयर। प्यून उसकी बात सुनकर पलटकर अर्नव को देखने लगा। अर्नव ने उसे जाने का इशारा कर दिया तो वो वहां से चला गया। धृति बस उसे देखती ही रह गई। तुम्हें बैठने के लिए चेयर नहीं मिलेगी, ऐसे ही काम करना होगा तुम्हें। धृति जो अब भी दरवाजे की तरफ देख रही थी, उसके कानों में जैसे ही अर्नव की आवाज़ पड़ी, उसने चौंकते हुए उसे देखा। अर्नव ने भौं उठाई तो धृति ने इनकार में सर हिला दिया। अगले ही पल अर्नव ने उसे घूरते हुए कठोर स्वर में कहा, अब खड़े खड़े मुझे क्या देख रही हो, मुझे देखने के पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें, इसलिए जाकर अपना काम शुरू करो। जो फाइलें तुम्हारे टेबल पर रखी हैं, उन्हें पढ़कर उन पर रिपोर्ट तैयार करो, और ध्यान रखना कि कल सुबह 9 बजे तक मुझे रिपोर्ट मेरे डेस्क पर मिल जानी चाहिए। धृति ने सर हिला दिया और पलट कर देखा तो टेबल पर 8-10 फाइलें रखी थीं। धृति ने गहरी सांस छोड़ी और लग गई काम में। एक के बाद एक फाइल पढ़ते हुए वो मेन पॉइंट्स को नोट करने लगी। देखते देखते लंच का टाइम हो गया। अर्नव और धृति दोनों ही अपने अपने कामों में लगे थे। धृति के सर पर पहले ही दिन इतनी जिम्मेदारी दे दी अर्नव ने कि वो नजरें भी इधर उधर नहीं कर सकी। खड़े होकर काम करना आसान तो नहीं था, पर कर रही थी वो। अर्नव बीच बीच में नज़र उठाकर धृति को देख ले रहा था, फिर वापस काम करने लगता। धृति को यूं काम में लगे देखकर और उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखकर अर्नव की निगाहें कई दफ़ा उस पर ठहरी। वो उसके चेहरे पर संघर्ष और परेशानी के भाव भी बखूबी देख पा रहा था, पर फिर भी चुप था। दोनों को ही वक्त का होश नहीं रहा था।